नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। दिल्ली नगर परिषद ने नागरिक और कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाली कई प्रमुख पहलों तथा आधारभूत संरचना सुधारों को मंजूरी दी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग ने तत्काल प्रभाव से ग्रैप 3 के प्रतिबंध समाप्त किए। दिल्ली यातायात पुलिस ने गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए यातायात परामर्श जारी किया और 25वां भारत रंग महोत्सव 27 जनवरी से दिल्ली और देश के अन्य शहरों में आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में ड्राई मुनक नहर के पुनर्द्वार और छठ घाट के विकास, सर्विस रोड के निर्माण तथा सिंगलपुर पुल के चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण के कार्य शामिल हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन कार्यों से शालीमार बाग, पीतमपुरा, केशवपुरम, नेताजी सुभाष प्लेस, पंजाबी बाग और कोहाट इनक्लेव के आसपास रहने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से यह क्षेत्र साफ, सुंदर और उपयोगी सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित होगा और यातायात व्यवस्था भी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुनक नहर का जीर्णोद्वार होगा तो यह एक सपने के साकार होने जैसा होगा।
इस नहर के किनारे से जब भी निकलते थे तो गंदगी से भरी हुई नहर हमें दिखाई देती थी, ऐसा लगता था कोई कूड़ा घर है। पर आज जब ये नहर का जीर्णोद्धार होगा, अब ये गंदगी की नहर नहीं रहेगी, एक खूबसूरत नहर जिसमें साफ सुथरा पानी होगा, पार्क होगा, लाइटें होंगी जिसके आसपास लोग बैठ सकेंगे और छठ के महापर्व पे हम पूजा आराधना करेंगे।
दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहेब सिंह ने आज नई दिल्ली नगर परिषद की एक बैठक में नागरिक और कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली कई प्रमुख पहलों तथा आधारभूत संरचना सुधारों को मंजूरी दी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
इन सुधारों में नगर परिषद के संविदा कर्मचारियों के लिए नकद रहित मेडिकल स्वास्थ्य योजना, प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्रों में भर्ती नियमों में सुधार और प्रदूषण कम करने की पहल की स्वीकृतियां शामिल हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारियों के लिए बेहतर कल्याणकारी योजना लाने, बिजली और पानी की आपूर्ति करने तथा सीवरेज और सड़कों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने संबंधी सुधारों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज और परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत चहल सहित प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आज रजौरी गार्डन के वार्ड 95, 96 और 97 के पार्टी मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री सिरसा ने क्षेत्र की समस्याओं को सुना और विकास कार्यों की समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पर्यावरण मंत्री ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जनहित के कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कार्यों को तय समय सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के निर्देश दिए। दिल्ली जल बोर्ड ने आज बताया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना मरम्मत कार्य के कारण इस शनिवार को कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी। जल बोर्ड ने कहा कि राजधानी के अर्जुन पार्क, इंद्र पार्क, नागली, सकरावती, प्रेम विहार, निरंजन पार्क, नागली विहार सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से पानी जमा रखने की सलाह दी गई है। पानी के टैंकर टेलीफोन नंबर 1916 पर उपलब्ध रहेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव खेरवाल ने आज दिल्ली नगर निगम एमसीडी के आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। श्री खेरवाल 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इस अवसर पर श्री खेरवाल ने कहा कि वे शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने, दिल्ली नगर निगम को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, व्यापार करने में सुगमता के तहत सुधार और बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करने पर बल देंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना के तीसरे चरण ग्रैप 3 के प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार के बाद यह निर्णय लिया गया। क्षेत्र में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 322 दर्ज किया गया। आयोग ने कहा कि पहले और दूसरे चरण के अंतर्गत प्रतिबंध लागू रहेंगे। हालांकि मिट्टी के काम, खुदाई, सड़क निर्माण और बड़े मरम्मत कार्यों सहित सभी निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के परिवर्तन कार्य बल ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए निरीक्षण और परिवर्तन कार्यों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये समीक्षा कार्यबल की 124वीं बैठक के दौरान हुई। इस महीने की 7 से 19 तारीख के बीच किए गए निरीक्षणों में उद्योगों, डिजिटल जनरेटर सेट, निर्माण और विध्वंस स्थलों, सड़क की धूल और बायोमास तथा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जलाने जैसे प्रमुख प्रदूषण स्रोतों को शामिल किया गया। आयोग ने पाया कि निरीक्षणों के बाद 9 रेडीमिक्स कंक्रीट संयंत्रों को बंद करने की सिफारिश दी गई है। अब तक एनसीआर में 25,000 से अधिक इकाइयों और परियोजनाओं का निरीक्षण किया जा चुका है। आयोग ने कहा कि एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए सख्त परिवर्तन, हितधारकों का अनुपालन और सभी एजेंसियों के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। ईशानी की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के दंगों में राजधानी के जनकपुरी और विकासपुरी इलाके में हिंसा भड़काने से संबंधित मामले में बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने आज मौखिक रूप से संक्षिप्त आदेश में 68 वर्षीय पूर्व सांसद कुमार को बरी किया। दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में कल होने वाली गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस के अनुसार फुल ड्रेस रिहर्सल कल सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और कर्तव्य पथ सी हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोल चक्कर, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर से होते हुए लाल किले पर समाप्त होगी। इस अभ्यास को देखते हुए आज शाम 6 बजे से कल परेड के अंत तक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर वाहनों के आने जाने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और दक्षिण दिल्ली आने से बचें। गणतंत्र दिवस समारोह के सुरक्षा इंतजामों के कारण कल और 26 जनवरी को सुबह 3 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा मेट्रो स्टेशन के गेट पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो के अनुसार इन प्रभावित स्टेशनों में केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट और आईटीओ शामिल हैं। वायुसेना इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा बलों का नेतृत्व करेगी। नई दिल्ली में आज गणतंत्र दिवस समारोह निदेशालय एयर कोमोडोर इमरान जैदी ने कहा कि वायुसेना के स्क्वाडन लीडर हेमंत सिंह कन्यार श्रद्धांजलि समारोह का नेतृत्व करेंगे।
भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दस्ते में 4 अधिकारियों के साथ 144 वायु सैनिक शामिल होंगे। 75 सदस्यीय वायुसेना बैंड का प्रदर्शन भी होगा। बैंड में 66 अग्निवीर शामिल होंगे। 9 महिला अग्निवीर पहली बार प्रस्तुति देंगी।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किए गए नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि प्रदर्शित प्रणालियां लंबी दूरी की जहाजरोधी हाइपरसोनिक मिसाइल और DRDO की झांकी लड़ाकू पनडुब्बियों के लिए नौसेना प्रौद्योगिकी हैं। मंत्रालय ने बताया कि यह मिसाइल स्वदेशीय एवियोनिक्स प्रणाली और उच्च सटीकता वाले सेंसर पैकेज से सुसज्जित अपनी तरह की पहली हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। DRDO की झांकी का विषय है लड़ाकू पनडुब्बियों के लिए नौसेना प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियों को लाल किला स्थित भारत पर्व पर 31 जनवरी तक प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पे 30 पॉट्स की क्षमता वाले एक आधुनिक होटल, एक उच्च स्तरीय भोजनालय और एक अन्य यात्री केंद्रित व्यापारिक सुविधाओं का विकास करेगा। एक रिपोर्ट।
पॉड होटल नए आधुनिक तरीकों से यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्माण किए जाते हैं, जो स्टेशन परिसर के अंदर ही कम समय के लिए रहने की सुरक्षित और किफायती जगह प्रदान करते हैं। एनसीआरटीसी ने जानकारी दी है कि आनंद विहार जैसे अत्यधिक व्यस्त रहने वाले स्टेशन पर पॉड होटल उन यात्रियों के लिए आराम करने की जगह का एक बहुत जरूरी विकल्प देगा जो लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 4000 वर्ग मीटर से अधिक का एक संभावित संपत्ति विकास क्षेत्र लाइसेंस पर दिया गया है, जो स्टेशन के अलग अलग स्तर पर चार जगहों पर बांटा गया है। इसके साथ ही एनसीआरटीसी खाद्य और पेय पदार्थ बिक्री केंद्र, कार्यालय स्थान, कपड़ों के शोरूम तथा ऐसी अन्य सुविधाएं भी विकसित करेगा, जिससे यात्रियों के लिए नमो भारत का अनुभव अधिक बेहतर होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
उत्तर रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली विशेष आरक्षित रेलगाड़ियों का विस्तार करने की घोषणा की है। नई दिल्ली से कटरा जाने वाली रेलगाड़ी संख्या 04081 23 से 26 जनवरी तक चार अतिरिक्त फेरे लगाएगी, जबकि कटरा से नई दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी संख्या 04082 24 से 27 जनवरी तक चलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। 25वां भारत रंग महोत्सव भारत का अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 27 जनवरी से दिल्ली और देश के अन्य शहरों में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD द्वारा आयोजित इस वर्ष के महोत्सव का विषय है संवाद संस्कृतियों का। एक रिपोर्ट।
इस महोत्सव में एक समृद्ध श्रृंखला दिखाई जाएगी, जिसमें नृत्य और अभिनय रंगमंच, कठपुतली रंगमंच और पारंपरिक रंगमंच रूप शामिल है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चित्तरंजन त्रिपाठी ने कहा कि भारत रंग महोत्सव में आदि रंग महोत्सव, जश्न बचपन और बाल रंग महोत्सव जैसे विशेष खंड महोत्सव के मुख्य आकर्षण होंगे। श्री त्रिपाठी ने कहा कि यह महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है, जो वैश्विक रंगमंच और प्रदर्शन कलाओं के एक जीवंत केंद्र के रूप में भारत की भूमिका की पुष्टि करता है।
हम इस बार भारत रंग महोत्सव को भारत में हरेक स्टेट हरेक यूटी में कर रहे हैं, तो ये पहली बार हम कोई एक दूसरी तरह की कोलैबोरेशन कर रहे हैं कि जो समाज में एक कॉन्ट्रीब्यूशन नियमित रूप से कर रहे हैं फॉर गुड कंडक्ट, गुड हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, तो उस तरह की स्पिरिचुअल जर्नी वाली जो इलाका है उसके साथ हम जुड़ रहे हैं।
इस महोत्सव में 33 महिला निर्देशकों द्वारा निर्देशित नाट्य दिखाए जाएंगे। महोत्सव में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, जिनमें दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर समुदायों और स्थानीय समूहों के रंगमंच को शामिल किया गया है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। शाम 5:15 तक उद्यान में प्रवेश की अनुमति होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रत्येक सोमवार को और होली के अवसर पर 4 मार्च को उद्यान रखरखाव के लिए बंद रहेगा। राजधानी में आज मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल सुबह हल्की बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। दिल्ली नगर परिषद ने नागरिक और कर्मचारियों को लाभान्वित करने वाली कई प्रमुख पहलों तथा आधारभूत संरचना सुधारों को मंजूरी दी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तत्काल प्रभाव से GRAP 3 के प्रतिबंध समाप्त किए। दिल्ली यातायात पुलिस ने गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए यातायात परामर्श जारी किया। और 25वां भारत रंग महोत्सव 27 जनवरी से दिल्ली और देश के अन्य शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।